فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار یہاں پھر بیٹھنے کا موقع دیا دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا حق ادا کروائے اور ہم آج کے اس وقت میں کوئی ایک بات ضرور ایسی سیکھ کر جائیں کہ جو واقعی ہماری اگلی زندگی کے لیے کام کی ہو اور ہم اس کو پھر اپنی زندگی میں لا سکیں ابھی آپ کے سامنے سورت اثر رکھی میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک ایسا ہو کہ جس کو یہ سورت نہ آتی ہو بچپن سے سنتے اور میرا اس پہ بھی یقین ہے اللہ میں بھی اللہ نصیب ہے کہ کسی کو اس کا ترجمہ نہ آتا ہو اس صورت میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتا ہے زندگی والعصر زمانے کی قسم ٹائم کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان نقصان میں ہے آپ دیکھیے کہ جب کوئی کسی کو بیٹھے بیٹھے کہ تمہارا نقصان ہو گیا بینکرپسی فائل ہو گئی یو آر ان لاس تو ایک دم کیا فیل ہوتا ہے انسان میرے رہلے اپنی جگہ پہ نہیں رہ سکتا وہ ایک دم کہتا ہے ریئلی میرا نقصان ہو گیا اوہو واٹ ہی گیٹ لاسٹ کیا کیا وہ کیا لیکن جب ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں کیا یہ سوال آتا ہے یعنی میرا اپنے سے سوال ہے اور آپ سے بھی کہ جب ہم نے والعصر ان الانسان لفی خسر سنا تو کیا ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں کوئی بیڈ نیوز ملی ہے کوئی خوف کی بات ہے بیٹھے بیٹھے ایک دم فون کال آئے اور ایک دم سننے والا اس کو کہتے ہو اتنا بڑا نقصان اتنا لاس تو اس کے بعد کیا فیلنگ آتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا مے بی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے مے بی یہ ہو گیا کوئی فوت ہو گیا آپ سوچیں کہ کوئی فون اٹھایا اور ایک دم کہے انا للہ و انا الیہ راجعون کیا سوچیں گے یقیناً ہم یہی سوچیں گے کہ کوئی فوت ہو گیا کسی کی ڈیتھ کی خبر ہے حالانکہ ایک شخص تھے ان کے پاس جب لوگ کنڈولنس کے لیے آئے تعزیت کے لیے آئے اس کی بچی کی ڈیتھ کی تو انہوں نے کہا کہ آج میری ایک بیٹی فوت ہوئی ہے اور تم سب میرے سے دکھ کرنے آ گئے ہو لیکن کل میری عصر کی نماز قضا ہوئی اور تم میں سے کوئی مجھ سے افسوس کرنے نہیں آیا دیکھا جائے تو پرائیورٹیز کا فرق ہے ہم جس چیز کو نقصان سمجھتے ہیں نا اسی کو ہی نقصان کہیں گے بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جس چیز کے سحر میں ہم مبتلا ہوتے ہیں جس کو ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑی چیز اس کے جانے پہ نقصان ہے نا منی کیا ہماری نظر میں بہت بڑی چیز ہے تو منی یا مال کا نقصان ہمیں بہت بڑا نقصان لگتا ہے کسی کا مال جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے بیچارہ ہم اپنے ان تمام رشتہ داروں پہ پٹی فیل کرتے ہیں جن کے پاس منی کے حساب سے کچھ ہمارے خیال میں کمی ہے حالانکہ کروڑوں سے بچے ہوں گے پھر اولاد کو ہم ایک نعمت سمجھتے ہیں اور ہے لیکن کسی کا بچہ چلا جائے جوان بچہ کوئی بھی تو ہم اس کو نقصان سمجھتے ہیں یس بیکاز بچوں پہ تو نظریں لگی ہوتی ہیں کہ وہ یہ ہیں وہ ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم والعصر ان الانسان لفی خسر سنتے ہیں تو کیا ہمیں سینس آف لاس آتی ہے شاید نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں وقت کی دولت کوئی دولت نہیں لگتی سب سے زیادہ اہم چیز جو ہمارے پاس ہے نا وہ وقت ہے لیکن ہم اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں اس لیے گھنٹوں کے اعتبار سے ہم ضائع کر دیتے ہیں बाज दफा एक बिल्कुल बेकार वर्थलेस चीज को ढूंढने में बाजारों में हम शायद चार चार घंटे लगा देते हैं, फिर वो चीज ना मिले तो के अफसोस करते हैं, लेकिन वो चीज मिले ना मिले उस पे वक्त जाया हो जाए तो उसका अफसोस नहीं होता। अगले दिन फिर सर्च शुरू कर देते हैं कि चले अब दूसरी मार्केट जाते हैं, अभी भी कुछ समझ नहीं आई, अभी भी कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन आप देखिए कि जो लोग कल तक हमारे साथ थे और आज नहीं है, क्या हमारे पास है जो उनका चला गया? वक्त चला गया ना, जिंदगी चली गई, तो हम सबको अपने इस वक्त को गनीमत जानना है। रमजान बिल्कुल करीब है, आपको हैरत होगी सुन के, अभी तो कोई करीब नहीं है, मोर देन 1 month बल्कि 1.5 month। लेकिन मैं फिर कहूं कि रमजान बहुत करीब है। क्यों करीब है? इसलिए कि हमें उसकी बहुत सारी तैयारी करनी है, और जब शादी करीब होती है तो शायद 4-6 माह पहले से तैयारी शुरू होती है। हालांकि शादी कितनी लंबी होती है? आई थिंक अगर हम सिर्फ फर्स्ट चीजों को ही देख लें तो फ्यू आवर्स। चले हमारी शादियां अगर कह लें 1 हफ्ते पे जाती हैं, लेकिन उसके लिए हम तैयारी कितनी पहले शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें उसका इंतजार होता है। तो क्या हमने रमजान का भी इंतजार शुरू किया? तैयारी तो फिर उसी चीज की होती है जिसकी खुशी हो। इवन शादी किसी की होने वाली हो या किसी के दिन हो और आप मेंटली प्रिपेयर ना हो, तो आप तैयारी नहीं शुरू करते। कहते नहीं, पता नहीं इधर करनी है कि नहीं, पता नहीं अभी करनी है कि नहीं। हम कब किसी काम की तैयारी शुरू करते हैं? जब हम 100% कन्विंस्ड होते हैं कि यस हमने ये काम करना है और इसके बाद करेंगे। जरूरत है इस बात की। तो लिहाजा ऐसे वक्त में हमें इस चीज़ की फिक्र रखने की ज़रूरत है कि हम अपनी तैयारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो हमारे ये सेशंस हो रहे हैं ये इसी तैयारी का हिस्सा है। आज आप में से बहुत सारे साथी हमारे लिए न्यू हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। लेकिन हमने एक सीरीज शुरू की हुई है इस सोच के साथ कि रमजान से पहले हम इस्लाम A to Z, हम एक दफा गो थ्रू कर ले उन सब बातों को जो हमें बहुत दफा पता है। जस्ट लाइक हमें अपने आप को देखना है कि कहीं हमारे अमल में कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे रोजे जाया हो जाएंगे। आप देखिए कि इंसानी जिस्म में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं ना, कुछ चीजें अगर उनकी मौजूदगी में दूसरी चीजें इस्तेमाल करें तो कहते हैं उसका असर खत्म हो जाता है। एलर्जी का नाम सुना होगा आपने, बहुत लोगों ने सुना क्या, उसका एक्सपीरियंस भी किया। समटाइम कहते हैं ये नहीं खा सकते इसकी एलर्जी, यानी दो चीजों का आपस में रिएक्शन हो जाता है। तो समटाइम होता क्या कि हम नेकी के नाम पे बहुत नेकियां करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे अंदर कुछ गुनाह होते हैं, कुछ खराबियां होती हैं, तो फिर हम उसकी वजह से उसकी नेकी से महरूम होते हैं। एक जोक सुना, जोक नहीं इल्मी जोक कहते हैं इसको, अच्छे जोक्स होते हैं, हमारे एक उस्ताद हैं तो उनसे सुना, आपसे शेयर करती हूँ कि एक शख्स था उसने कहीं से एक सेब चोरी किया। पहले उसको चोरी किया, फिर उसको सदके में दे दिया, फिर किसी दूसरे आलिम के पास जहां भी गया तो उसको कहने लगा कि ये तुमने ऐसा क्यों किया। कहने लगा देखो मैंने कोई अपना नुकसान नहीं किया, मैंने एक सेब चोरी किया ना, मेरा एक गुनाह था। इस्लाम कहता है कि जो इंसान गुनाह करता है बस वो एक ही है, और हदीस में कि इंसान की नेकी एक करे तो 10 लिखी जाती है और गुनाह करे तो एक ही लिखा जाता है। कहने लगा देखो मैंने चोरी की तो मेरी एक चोरी लिखी गई, फिर मैंने उसको सदका दिया तो इस्लाम कहता है कि एक नेकी 10 के बराबर है, तो गोया कि मैंने 10 सेब सदके में दिए, उसमें से एक मेरा माइनस हो गया चोरी वाला, स्टिल आई हैव 9 टू गेट द रिवॉर्ड। अब आप समझ रहे हैं? अब ये बात सुन के जो आलिम थे उन्होंने कहा कि भाई साहब आपकी ये जो मैथमेटिक्स है हिसाब माशाल्लाह काफी तेज है, लेकिन मेरे पास कोई और खबर है। उन्होंने उनको सुना दिया कि पहली बात है चोरी, तो वो तो चोरी है, सारी को बस सारी का चोरी की बात सूरह मायदा में आती है। बाकी रह गई बात, जो आपने 10 सेब सदका किए हैं तो अल्लाह ताला जो है वो गलूल यानी चोरी के माल को का सदका कबूल नहीं करता, तो ना तो आपका सदका कबूल हुआ है और चोरी का इल्ज़ाम आपके ऊपर मौजूद है। तो बस दफा हमारे आमाल ऐसे होते हैं। ये बात जो मैंने यहाँ आपको बताई है ना, इस वजह से कि हम 10 नेकियां करते हैं लेकिन कोई एक गुना छोड़ते नहीं है, जिसकी वजह से वो नेकियां भी जाया हो जाती है, उसका असर खत्म हो जाता है। समटाइम आपने सुना होगा कि एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक इलाज एक साथ नहीं कर सकते। जब भी आप कभी कोई इलाज होम्योपैथिक वे से कराएंगे तो वो पूछते हैं कि आजकल आप कोई और दवा तो नहीं ले रहे, वजह क्या है कि उसके साथ असर खत्म होगा। तो हमारी जिंदगी में बहुत दुरंगी है, ये दुख की बात है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा में, वखलतु अमलन सालिहन वाखरा सईयन, कुछ लोग हैं उन्होंने अच्छे अमल और बुरे अमल मिलाए हुए हैं, खिचड़ी पकी हुई है। अच्छे काम भी जरूर करेंगे लेकिन बुरे छोड़ने को दिल नहीं करता। तो जब रमजान आए, खास तौर पे, बाकी दिन तो और हैं ऑफ कोर्स, नेकी तो एक भी बड़ी है, अभी हमने नमाज पढ़ी और अब फिर पढ़ेंगे तो ये भी तो एक नेकी, हम नहीं चाहेंगे कि जाया हो। कोई चाहता है कि बस बड़ी बड़ी चीजें तो ना जाया हो, छोटी छोटी जाया हो जाए, हंडिया बनाए और जाया हो जाए तो कैसा लगेगा? तो क्या हम चाहते हैं कि हम जो इबादत दिन रात करते हैं ये जाया हो जाए, और वजह उसकी सिर्फ हमारी लाइल्मी हो, हमारी जहालत हो, हमारे अकायद में कोई ऐसी चीज आ जाए कि जिसकी बेस पे हम अपने आप को इतना फील ही ना कराए? इट्स फाइन, जो हमारे इससे पिछला सेशन था उसमें हमने बिदत पे बात की, और मेरा ख्याल है पूरी बात सुनने के दौरान आपको एक दफा भी ये फील नहीं हुआ होगा कि ये बात गलत है। इट्स वेरी लॉजिकल कि अल्लाह के दीन में अपनी मर्जी से चेंजेस कर लेंगे तो फिर अल्लाह कैसे एक्सेप्ट करे, राइट? हम में से कोई करेंसी नोट कोई भी इशू करके जाके बैंक में दे तो नहीं कबूल होगा ना, जब तक कि गवर्नमेंट का इशू ना हो। उससे पहले कल के सेशन में हमने बात की थी औलिया अल्लाह कौन है, औलिया कराम पे बात की। उससे पिछले सेशन में हमने बात की थी वसीले पे, कि दुआ करते हुए। अब ये इतने हॉट टॉपिक्स हैं, मैं आज भी बात करने के बाद सोच रही थी कि मैं ऐसे मौजूद पे आमतौर पे नहीं बात करती, और स्पेशली आप जैसे लोग जो बिल्कुल नए आए हैं, तो मैं कहूँ कि ये क्या जरूरत है, मैं तो आपको एक मोटिवेशनल और जन्नत जहन्नम और स्टोरी सुनाऊँ, आई एम श्योर कि यू विल एंजॉय मोर, लेकिन मुझे आपको इंजॉय नहीं कराना, रियलाइज कराना। और इन महफिलों का जिसका हक ये होता है कि जिसके पीछे इतनी एफर्ट्स होती हैं, इतना घर वाले और साथी मेहनत करते हैं, तो हक बनता है आने वालों का भी कि हम उनके साथ कोई एक बात जरूर ऐसी शेयर कर सकें कि जिससे इंशाल्लाह उनको फायदा हो। तो आज हम जिस मौजू पर यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत लंबी नहीं, अपनी तरतीब में चल रहे हैं, वो क्या है कि सितारों के बारे में इस्लाम क्या कहता है, हॉरोस्कोप कह लीजिए, सितारों से किस्मत मालूम करना, और आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा। मुझे पता है कि ये बहुत क्रिटिक टॉपिक है, करना चाहिए, सुनना चाहते हैं? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमने रोजे रखने हैं, बड़ी मुश्किल से रखेंगे इतने लंबे रोजे, गर्मी भी आ जाएगी, डर भी बहुत है, जरा मौसम गर्म होता है लोग कहते हैं हाय रमजान आ रहा है, मौसम गर्म हो रहा है, फिर आगे से पता चले जी कि कोई एक ऐसी चीज हमारी आ गई जिसकी बुनियाद पे अब वो गर्मियों के रोजे भी कबूल नहीं हुए, या उसमें कुछ एरर आ गया। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी बात हम करेंगे कि इस्लाम ने सितारों के बारे में हमें क्या हुक्म दिया, या थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि इस्लाम से पहले सितारा परस्ती का रिवाज था। बहुत सारी कौमें ऐसी थी कि जो सितारों को पूजती थी, यानी देवर स्टार वर्शिपर। उसमें सबसे बड़ी मिसाल तो मिस्रियों की है, इजिप्शियंस जो थे ये सितारों को पूजते थे, बल्कि साथ ही साथ सूरज को भी पूजते थे। ये जो लफ्ज़ है ना फिरौन, जो उनका लीडर था, ये लफ्ज़ फिरौन फराइना से उनका खानदान चल रहा था, और फिरौन के लफ्ज़ के अंदर अगर आप देखें तो उनकी लैंग्वेज में मानी है सूरज देवता का अवतार। अब सूरज को चूंकि पूजना था, सूरज ऊपर है तो उल्टे होके तो सजदा नहीं करेंगे ना, फिर उन्होंने उसे एक मिथ निकाला कि सूरज ने अपना एक रूप फिरौन की सूरत में दुनिया में भेजा, लिहाजा लोग उसके सामने जाके सजदे करते थे, रुकू करते थे, जिसको कहने की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू आगे से आगे चलते जाएं। इसी तरह जो एग्जैक्टली जो कौम आता है कि सितारों को पूछती थी, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम थी, उर के मुकाम पे रहते थे, और उस दौर का ऐसी है जैसे आज का हब कह लीजिए कि यूएसए कैनेडा, अपने वक्त का बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क, दौलतमंद पढ़े लिखे लोग थे, बहुत ज्यादा दुनियावी तरक्की के रूज पे थे। यानी आज जो भी अमेरिका यूएसए को मेरा हल की हैसियत है, या आप कह सकते हैं कि यूके को या यूरोप को, इसी तरह का वो मुल्क था। सितारों से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, और सितारों से किस्मत मालूम करते थे कि ये करें काम क्या करें, इस वक्त सितारे क्या कहते हैं, दिस एंड दैट। तो आखिर होते होते ये जब नबी सल्लम के दौर में बात पहुंची तो वहां भी लोगों में अभी ये चीज मौजूद थी। अल्लाह के नबी सल्लम ने एक मौके पे फरमाया, जबकि बहुत तेज बारिश हुई, तो आपने फरमाया कि सुबह को इस बारिश की वजह से कुछ लोग जन्नती बन जाएंगे और कुछ जहन्नमी। तो लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी भाई हाओ ये कैसे कैसे क्या वजह, तो आपने फरमाया कि कुछ लोग सुबह कहेंगे फुलां सितारे के असर से बारिश हुई। अरबों के अंदर एक शिर्क की किस्म क्या थी, कहते थे कि ये सितारे जब हमसे खुश होते हैं तो हम पे बारिश बरसाते हैं, अपनी देवियों के नाम पे, यानी जो उनकी गॉडेसेस थी उनके नाम के साथ भी उनकी कुछ इसी किस्म की रिवायात थी कि ये सितारे खुश होंगे तो बारिश बरसेगी, खुश नहीं होंगे तो बारिश नहीं बरसेगी। اور فرمایا کہ جو یہ کہیں گے کہ نہیں بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے تو وہ جنتی ہوں گے. اب یہ ایک حدیث ہے لیکن بہت ہی اہم بات ہے اس میں. آج اگر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پارٹ آف دا اسلام ہے. آپ کوئی اخبار کھول لیں, میگزین لے لیں, ویکلی میگزینز ہیں, ایک پورا پیج ہوتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا اور آپ کے سٹارز کون سے ہیں. اور 12 معروف ستارے تو سب کو ہی پتہ ہے, کینسر اور ویرگو اور نہ جانے کیا کچھ لیبرا. یہ کیا ہے کہ جی ستاروں کا سے. پھر آپ نے یہ بھی لفظ بہت سننا ہوگا, جی ہمارے تو ستارے آج کل بڑی گردش میں, سنا ہوا. پھر آپ کہتے ہیں کہ شادی ہونی ہے تو پہلے لڑکے لڑکی کا سٹار دیکھ لو, پہلے ہی رشتے نہیں ملتے لوگوں کو, اب سٹارز کا مسئلہ ڈال دو. سچی بات ہے, پہلے لوگوں کے رشتے کتنے آرام سے ہو جاتے تھے, پتہ ہی نہیں چلتا. بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی, گھروں میں رشتے ہو جاتے تھے. دن بہ دن ہم نے اتنا مشکل کر دیا, کہیں کزن میرج, کہیں کچھ کر کرا کے, پھر کہا بلڈ چیک کراؤ, اب ان کا ڈی این اے چیک کراؤ, اب ان کی شادی ہو. اب سٹارز کا بھی ایک کرے. میں نے ایک بہت پہلے کا اخبار میں ایڈ دیکھا ہوا, میرے مائنڈ میں وہ آ رہا ہے اس وقت, کہ جس میں ہوتا ہے نا ضرورت رشتہ. تو ضرورت رشتہ میں جو کچھ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, سومو سلاد کی پابند لڑکی اور کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی نا. تو کوئی ایک ایڈ ایسا تھا جس میں لکھا تھا کہ فلاں سٹار کی لڑکی مجھے چاہیے کیونکہ میرا میچ اس کے ساتھ بہت اچھا. اور اللہ معاف کرے, اسکول کالج کے درمیانے میں ہم نے بھی کافی گل کھلائے ہوئے ہیں, یقین کریں. اللہ ہمیں معاف کر دے, اب تو اس پہ رونا آتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے, یعنی علم نجوم کہہ لیجیے اس کو, اسلام کا اس کے بارے میں کیا ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ ناجائز ہے اور حرام ہے, یعنی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اٹس اوکے بٹ ناٹ گڈ, یہ حرام ہے. اور اس کے بارے میں علم حاصل کرنا, اس کے اوپر اتنی شدت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی سے قسمت کا حال پوچھتا ہے یا ہاتھ دکھاتا ہے تو اگر صرف کرتا ہے یہ کام تو اس کے بعد 40 days تک, 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اب ہمارے تو 30 روزے ہیں, ہم یہی دیکھ لیں کہ اچھا اس سال عید کے بعد کیا خوشی ملنی ہے, تو 40 دن اس کے بعد عبادت نہ قبول نہ ہوئی تو پھر آپ کہیں اچھا چل جب قبول ہی نہیں ہونی تو پھر روزے رکھتے ہی کوئی نہیں, اور خوش ہم. ہم سمجھدار بھی کافی ہیں, چلو ضائع نہیں کرتے پھر. نہیں, زندگی کا نہیں پتا, ایک دن بھی قیمتی ہے. تو لہٰذا جو گیا کسی کو ہاتھ دکھانے یا کسی سے اس نے کو پوچھا, 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی جاتے ہیں, اٹس اوکے 40 days اینڈ نو پرابلم. ہم کون سا بلیو کرتے ہیں, یہ ایک بہت اہم آگے سے لوگ نکتہ دیتے ہیں کہ ہم کون سا اس کی بات پہ یقین رکھیں گے. تو حدیث کا اگلا حصہ ان لوگوں کو فائدہ دے گا. آپ نے فرمایا اگر وہاں جا کر اس بتانے والے کی بات پر یقین رکھا جو اس نے کہا کہ اب ایسا ہی ہوگا, تو پھر اس نے اس دین کا انکار کیا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا. سورۃ الانعام کی آیت 97 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ستاروں کو بنانے کے 3 مقاصد ہیں قرآن میں, ان میں سے ایک مقصد سورۃ الانعام کی آیت میں ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستارے نیویگیشن سسٹم ہے, اور آج بھی آپ میں سے بہت ساری سسٹرز کو یہ معلوم ہوگا کہ جہاز جو چلتے ہیں وہ کون سی سڑکوں پہ چلتے ہیں. بچپن میں یہ سوال بہت ہوتا تھا, جہاز راستہ کیوں نہیں بھول جاتا. تب صرف یہی تھا لاہور سے کراچی یا کراچی سے لاہور آتا ہوا دیکھتے تھے, تو میں سوچتی ہوتی تھی اس کو کیسے بتائیے, سیدھا ہی جا رہا ہے, تھوڑا سا مڑ گیا تو ہو سکتا ہے لاہور کی وجہ سے سیالکوٹ پہنچ جائے, اس کو کون بتاتا ہے. قرآن نے بتا دیا لکم نجوم لتہتدوا بہا, ستاروں کی ڈائریکشن میں جاتے ہیں, اوپر یہ راستے بنے, یہ چینلز ہیں آسمانوں کے, اس کے ذریعے سے. آج بھی آپ دیکھیں سمندری جہازوں میں کون سے راستے ہیں, ستاروں کے رخ پہ چلتے ہیں. آپ شاید اندازہ ہوگا آپ کو, بڑے لوگوں سے پوچھئے جب صحراؤں میں لوگ سفر کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر چلتے تھے, ان کو اتنا علم تھا کہ کس موسم میں, کس گرمی سردی میں کون سا ستارہ نکلتا ہے, اس کی ڈائریکشن کون سی ہے, کون سا ایسٹ ہے, نارتھ ہے, ویسٹ ہے, یہ سب ستاروں سے ہوتا تھا. تو ان کا پہلا مقصد کیا, ڈائریکشنز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا بڑی مزے کی بات ہے, ایسے ہی صرف ایک لفظی بات کہہ رہی ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کے ستارے اس لیے بنائے کہ لوگوں کو راہ ملے. ہاں تو زمین پہ بھی کچھ ستارے ہوتے ہیں, سٹارز, وہ کیا کرتے ہیں, یعنی آسمان کے ستارے گائیڈ کرتے ہیں تو جو زمین کے سٹارز ہیں وہ مس گائیڈ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ آج हमारी यूथ, और ये मत सोचिए ये आजकल की यूथ जो वो परेशान ना हो, ये हमारी यूथ में भी ऐसे ही था। हर यूथ में बंदा इन्हीं मुश्किलों में पड़ा होता है कि सितारे देखने हैं। मुझे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के वो सब सीन याद हैं अभी भी, ब्रेक्स में, या कुछ लड़कियां अल्लाह माफ करे जो सुबह सिर्फ रोल कॉल लगवा के कोनों में यूं बैठी हाथ मालूम कर रही थी, और हाथ की एक एक लाइन अल्लाह माफ करे उनको जुबानी याद थी, और आहें भरती, हाँ ये लाइन तुम्हारी मेरे हाथ में होती ना, यकीन करें। यानी जाहिलियत की बातों पे हंसना भी नहीं चाहिए और उस पे दिल में डर भी होना चाहिए। लेकिन मैं, हमारी दोस्तों में एक दोस्त थी तो उसको बड़ा शौक था हाथ देखने का, यकीन करें हम बेवकूफों की तरह उसके साथ लगे रहते थे। और फिर वो एक लाइन मेरे हाथ में ऐसे, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे शर्म आएगी, पूछेंगे तो बता दूंगी। उसमें कहती थी तुम्हारे हाथ, पूछे फिर मैं बताऊं, कहती थी कि तुम्हारी लव मैरिज होगी। और बिलीव मी वो वजह भी बताती थी, और मेरी क्लास की जो लड़कियां थी, ये बिल्कुल अर्ली जमाना है हमारा कॉलेज का, शुरू कह लें या स्कूल का एंड, तो मेरी दोस्तें कहती थी सारी लाइनें ले लो, वो लाइन हमें दे दो। और आपको मजे की बात बताऊं, मेरे शौहर कहां मुझे मिले, मैंने उनको ना मेरे खानदान के ना कहीं के ना कुछ के, मैं सोचती हूँ कि यानी लोग सोचते हैं कि लव, और उस उम्र में लड़कियों का सबसे बड़ा गम लव मैरिज ही होता है ना। यस राइट अनीसा जी, इधर से आप में से भी काफी का आजकल गम यही होगा। आजकल तो लोग कहते हैं लो इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, जब हम छोटे थे तो लव मैरिज सुन के हम शर्मा जाते थे और चेहरे पे रंग आ जाता था और साथ ही अम्मी अब्बा याद आ जाते थे। अब तो अम्मी अब्बा खुद कहते हैं बस लव तुम कर लो, मैरिज हम कर देंगे तुम्हारी। रियली एक माँ की बात याद आती है, वो कहती है मैंने अपने बेटे से कहा देख लो लड़की, बस शादी से पहले मुझे बता देना क्योंकि मैं जूतियां नहीं तोड़ सकती, तुम खुद ही चूज करो, बस शादी से पहले हमें जरूर बताना। तो वक्त बदल गया, रियली बहुत बदल गया। लेकिन अब ये इतनी बड़ी जहालत थी, अल्लाह ताला सबको माफ करे, चाहे हम जोक में करते थे कुछ भी है, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज की किराई तो ये दुरुस्त नहीं है। हजरत इब्ने अब्बास की एक रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने सितारों का इल्म सीखा गोया इसने जादू का एक हिस्सा सीख लिया, और फिर वो सितारों के इल्म में जितना आगे जाएगा उतना उसके जादू के इल्म में इजाफा होगा। यानी दिस इज द पार्ट ऑफ सहर मैजिक। और आप देखेंगे ये सब चीजें साथ साथ होंगी, जहां भी ये चीज होगी ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए ये इस्लाम के बुनियादी अकायद के साथ क्लैश करता है। आप एक बेजान सितारा जो अल्लाह की मखलूक है उसके हाथों में चलता है, कुरान क्या कहता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, या देखे सुबहान अल्लज़ी सख्खरा लना, मुसख्खर चीजें, सितारा छोटी सी चीज है ना, अल्लाह ने जिसको पैदा किया वो क्या है, मखलूक है, क्रिएशन है। हम एक क्रिएशन को क्रिएटर के फैसलों के आगे बड़ा कर देते हैं कि ये जो चाहेंगे वो होगा, इससे बड़ा शिर्क और क्या होगा। लेकिन ना कभी शिर्क तौहीद का फर्क किस तरह किसी ने समझाया था, जैसे अल्लाह की किताब ने सिखाया, ना हमने इस पर कभी गौर किया था। तो लिहाजा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी रास्ते पे नहीं चलना चाहिए जहां से ऐसी खुशबू आए। फिर इसी तरह आप देखिए कि सितारों से एक दूसरा काम अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या बताया कि ये खूबसूरती हैं। सूरत मुल्क में आप लोग रात को सूरत पढ़ के सोते होंगे तो शुरू में पढ़ लेते हैं कि ज़य्यन्नस समा दुनिया भी मसाबी हवजालना हरजूमल लिशयातीन। एक ही आयत में दो मकसद और बता दिए। पहला मकसद क्या है, ज़य्यन्ना जीनत ब्यूटी है। कहते हैं कि जब तक इंसान नहीं पैदा हुआ था, यानी आदम को पैदा करने से पहले जो दुनिया की कैफियत थी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट थी आज से। इतना खूबसूरत आसमान नहीं था जो आज है, ब्लैक कलर का था। और ब्लैक कलर के आसमान पे आप नजरें डालें तो जरा सोचिए आपको कैसी लगेंगी, खौफ आएगा ना, धुंधला था। जो कुरान पाक में भी आता है कि आसमान धुआं था, स्मोकी था, और आप सोचे तो खौफ आएगा ना। और जिन्नात थे पहले तो वो जरा स्ट्रांग होते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए जो बेहतर था वो कर दिया। जो ही इंसान आया थोड़ा नाजुक मिजाज है तो अल्लाह ताला ने आसमान को काले के ऊपर सिल्वर रंग का कर दिया। आज आप देखिए जितने हमारे पास कॉम्बिनेशन है ब्लैक कलर के ऊपर, सिल्वर मोती, सिल्वर दबका, सितारे, स्टोन, ये कहाँ से आए हैं, ये रात से आए हैं ना, अल्लाह ने खूबसूरती के लिए इसको पैदा किया। इससे पता चलता है कि अल्लाह सुबहान तआला जो है वो इन चीजों को जानते हैं, उनको पता है कि इंसान को क्या चाहिए और इंसान की जिंदगी में क्या चीजें अहम है। तो लिहाजा ऐसी चीजों को सामने रखकर हमें भी अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है कि हम इन चीजों को कितना लेते हैं। तीसरा मकसद क्या है कि रुजूमल लिशयातीन, सितारों का मकसद क्या है, आसमान पे जो शयातीन जाते हैं उनको ये पढ़ते हैं। आपने उर्दू में एक बात सुनी होगी, सितारा टूटा। पाकिस्तान में भी अक्सर देहातों में जो लोग खुली आसमान के नीचे सोते हैं तो वो कहते हैं दूर आज रात को एक आध सितारा टूटा था। सुना मैंने ये बात। ये जो सितारा टूटता है ना, वो असल में क्या होता है कि शयातीन आसमानों पे अल्लाह ताला और फरिश्तों के बीच की जो निगोसिएशन है ना, वो सुनने चाहते हैं और अल्लाह ताला ने मना कर दी। पहले सुन लेते थे कुछ ना कुछ हिस्सा। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला हुक्म देता है ना ऊपर जिन फरिश्तों को, जैसे बारिश होनी है, तो अब मीकाइल जो है वो बारिश के फरिश्ते हैं, अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, उधर बारिश होगी उधर बरसे, जस्ट लाइक मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है। शयातीन क्या चाहते हैं कि ये बातें सुने और आकर फिर काहिनों के, काहिन कौन होते हैं, फॉर्चून टेलर्स, उनके कान में डालें और वो लोगों को फ्यूचर की फोरकास्ट करें, आपका हफ्ता कैसा रहेगा ये, और पैसे कमाएं। अब होता है कि एक शैतान फिर उस पर दूसरा, फिर दूसरे पे तीसरा, चौथा, इस तरह एक दूसरे के ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं और कोई ना कोई एक हिस्सा ऊपर से सुन लेते थे, पहले सुन के फिर वो दूसरे के कान में, फिर दूसरा तीसरे के कान में, करते करते वो नीचे 100 झूठ एक सच में मिलाकर पेश करता था। अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि जू ही ऊपर कोई पहुंचता है तो ऊपर से उसको आग पड़ती है। यानी सितारे वही काम करते हैं जैसे आज भी कोई आग जलाकर तो किसी चीज को मारने की कोशिश करे, अब नहीं वो सुन पाते। बहुत छोटा सा हिस्सा जो सुनते हैं उसमें भी झूठ सच मिलाकर इन चीजों को लाकर दुनिया में पेश कर देते हैं। तो लिहाजा कहने का मतलब क्या है कि इन सारी चीजों से अवॉइड करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि इसमें शिर्क वाली क्या बात है। कोई कहेगा क्या हरज है, सो नाइस, मजा आता है, अच्छा लगता है। और खास तौर पे स्टेशनरी की शॉप्स पे जाके आप देखें, जितनी स्टेशनरी मेरा लिए स्टार से रेलेवेंट होती है वो दूसरी चीजों में नहीं होती। आप देखिए कि लेटर पैड्स हैं तो उनके स्टार्स के, और बाज घरों में बच्चों के कमरों में भी ऐसे सजे होते हैं, कमरे में जाते ही पता चल जाता है कि इसका स्टार कौन सा होगा।